तो वो लोग बैजनाथ लेकर आए, जो पैगंबर थे वो बैजनाथ लाए। बैजनाथ क्या होती है? मौजबी बैजनाथ, और भी वो तमाम रोशन दलाइल जो हिदायत की तरफ लेके चले वो भी बैजनाथ। आप जैसे कि अगर कोई पैगंबर कोई मौजजा भी नहीं दिखाता तो तब भी उसकी अपनी जिंदगी जो है ना वो बैजनाथ होती है, वो एक रोशन दलील होती है कि ये सच्चा है। उनकी पाकीजगी, उनकी किरदार, उनका अखलाक, उनके तौर अतवार, ये सब बय्यिना होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी बय्यिना थी। तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को ऐसे ही नहीं भेज दिया, खाली हाथ नहीं भेज दिया, उनको बिल बय्यिनात रोशन दलाइल के साथ मोजज़ात दे के भेजा। वह जुबर, और जुबर जबूर की जमा है, यानी स्क्रिप्चर्स, सहीफे। सहीफे या तो किसी पैगंबर के साथ उसके साथ अपने सहीफे भेजे गए, या वो पिछले पैगंबर की ही शरीयत को लेके आगे चला। तो बाद के साथ किताबें आई, बाद के साथ सहीफे आए, और बाद ने उन्हीं को आगे किया। तो पैगंबरों को अल्लाह ताला ने ये दिया, वह अंजलना इलैका ज़िक्रा, और हमने आपकी तरफ यानी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जिक्र नाजिल किया। किस लिए ये जिक्र आया? ली तो बय्यिना लिन्नास, ताकि तू आपके ऊपर इसलिए नाजिल किया कि आप बयान करें लोगों को ये जिक्र, यानी वाजे कर दे, एक्सप्लेन कर दे इसको लोगों के ऊपर। याद रखिए, ये आयत जो है ना, ये आयत उन लोगों के लिए हुज्जत है जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं है। इस आयत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथॉरिटी बताई गई, उनका रोल बताया गया। आपने कभी सोचा, कुरान तो अहले जुबान पे ही आया था, उनके अंदर ही नाजिल हुआ था। वो लोग अरबी जानते थे, वो हमारी तरह थोड़ी थे। उनके हालात को सामने रखते हुए कुरान की आयतें उतरती थी, वाकयात उनके सामने हो रहे थे। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कुरान की कुछ तख्तियां होती जो किसी पहाड़ पे पड़ी होती, वो जाके ले आते और उनको पढ़ लेते? आखिर वो अरबी तो जानते थे, और आखिर उनको हालात भी पता थे, क्यों नहीं ऐसा हुआ? इससे आपको क्या बात समझ आती है? फिर क्यों अल्लाह ताला ने पैगंबर को भेजा? इससे आपको पैगंबर की अहमियत और उनका रोल पता चलता है कि क्यों भेजा अल्लाह ताला ने। इसलिए कि ये कुरान अगर आसमान से ऐसे ही डायरेक्ट उतर जाता और इसको कोई एक्सप्लेन ना करने वाला होता तो किसी को समझ नहीं आनी थी। ये खुद से नहीं समझा जा सकता, ये एक इंसान को दिया गया, उस पे उतारा गया, वो पढ़ के सुनाए लोगों को, एक्सप्लेन करें, खोल के बताएं, आयात को खोल के बताएं, उनको प्रैक्टिकली करके दिखाएं, उनकी तशरीह करें अमल से भी और जुबान से भी, तब समझ आती है ये कुरान की, तब प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कुरान जहां जरूरी है वहां पे साहिबे कुरान भी जरूरी है। क्यों ये बात लोग भूल जाते हैं कि हमें हदीस की उतनी जरूरत है जितनी कुरान की, क्योंकि कुरान की तफसीर हमें हदीस से मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा इसको खोल के बयान किया। अगर आप ना करते हम तो एक सलाह का लफ्ज भी नहीं समझ सकते। आपको पता है वाकई मुसलाह कितनी दफा आया कुरान में? अब सलात के 22 माने हैं लुगत में, 22। रहमत को भी सलात कहते हैं, दुआ को भी सलात कहते हैं, आग पे तपाने को भी सलात कहते हैं। आप कौन सा माना लेते हैं? कैसे समझते हैं? क्या सलाह कैसे पढ़नी है? उसके अंदर कयाम में क्या पढ़ना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, ये बातें तो नहीं है कुरान के अंदर? कौन आपको बताता? कितनी रकतें हैं कौन बताता? और बेशुमार बातें इससे रिलेटेड, वुजू के तरीके को ब्रीफली कुरान के अंदर बताया गया है, लेकिन एक्सप्लेन करना इस, ये किससे टूट जाता है, इसकी एक एक छोटी छोटी बारीकी को बताना, इसको करके दिखाना, ये सब तो कुरान में नहीं है। इसके लिए कोई इंसान चाहिए था जो हमारे सामने होता, जो करके दिखाता उसको देखने वाले फिर वैसा करते, फिर वो आगे वालों को वैसा बताते, इसकी जरूरत थी। फिर जब लोग कहते हैं हम कुरान को तो ले लेते हैं लेकिन हमें हदीस की जरूरत नहीं, तो गोया वो ये कह रहे हैं हमें नबी की जरूरत नहीं, नबी की बात ही हदीस है। तो इसलिए जहां कुरान है वहीं साहिबे कुरान है। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने नाजिल किया, अद्दिकर रिमाइंडर है, वो पैगंबर एक रहमत है, एक किताब ऐसे ही दे दी जाए नहीं लोग समझ सकते, बेशुमार चीजें इसमें नहीं समझ सकते, कुछ से कुछ करने लग पड़ेंगे। इसीलिए आज ये लोग क्यों कहते हैं कि हमने हदीस को नहीं मानना, जानते हैं इनके पीछे इनका मोटिव क्या है पता है आपको? इसलिए कि अगर हदीस निकाल दी ना तो फिर तो मजे ही आ गए, क्योंकि कुरान की जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करते रहो, फिर जैसे मर्जी समझो, जिसका दो जो दिल करेगा वो वैसे समझेगा। सलात का माना दुआ कर लिया, चलो जी आप उठ के दुआ कर लिया करें, बस सुबह भी दुआ कर ले शाम को भी दुआ कर ले, तब देखिए ना सलात का तो मतलब लुगत में दुआ भी है। अब क्या, ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, ऐसी बेशुमार मिसालें, जिस वक्त आप हदीस को निकाल देंगे तो कुरान को फिर जैसे मर्जी माने ट्विस्ट किए जाए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन कर दिया इसको, और यही चीज है जो उम्मत को मुत्तहिद करने वाली है। जब लोग अपनी मनमानियां करना चाहते हैं तो हदीस को निकाल देते। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। तुम इनको पकड़े रखोगे ना तो कभी गुमराह नहीं होंगे, और आज गुमराह ही इसलिए कि इनको छोड़ दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है ये, यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी कि एक आदमी ऐसा होगा कि जो तकिया लगाए हुए ऐसे बैठा होगा और कहेगा हमारे लिए कुरान काफी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं। समझ आई? तो इसलिए याद रखिए कुरान समझ नहीं आ सकता जब तक हदीस ना हो। याद रखिए ऐसे लोगों के कभी फितने में ना आए, और ये लोग आजकल बहुत फैल रहे हैं, और ये लोग यूथ को बहुत टारगेट करते हैं, ये कॉलेजों वगैरह में, इसमें ये लोग बहुत है जो ये कहते हैं कि बस कुरान काफी है ना, हदीस को छोड़ दो, हदीस तो पता नहीं जी बाद में लिखी गई, हदीस का क्या है पता। यार इनसे बंदा पूछे लोगों तुम्हें इतना भी पता है कि हदीस को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया गया, तुम जानते हो, तुम रिजाल का इल्म जानते हो, जिनसे हदीस ली गई उनका इल्म जानते हो, उनके ऊपर किताबें हैं, तुमने कितनी हदीस की किताबें पढ़ी, तुम्हें ये भी पता है कि हदीस होती क्या है, कैसे हम तक पहुंची, इसका पूरा क्राइटेरिया पता है, या बस सुनी सुनाई बात किसी ने कह दिया ये हदीस तो बाद में लिखी गई जी, हदीस के ऊपर हदीस का क्या असर, या मैंने जैसे आपको पिछले बताया था किसी ने मुंह की बातें ना जो मर्जी शैतान मुंह में डाल दे, किसी ने जी कह दिया तो उन्होंने सहाबा ने हदीस लिखी, वो तो आदमी थे इसलिए उन्होंने आदमियों की फेवर में लिख दी, देखिए औरतों की फेवर में नहीं है हदीस। ये कहां के झूठ बोहतान इल्जाम सहाबा पे उठा के देखें, ये क्रिश्चियंस की सारी बुक्स जो है ना कितनी बाद में लिखी गई, कितनी बाद में लिखी गई, ईसा अलैहि सलाम भी उठा लिए गए उनके भी बाद, उनके हवारियों ने खुद ही लिख ली, उनका तो कहा जा सकता है, हमारा ऐसा नहीं है। ये इल्म अगर आप देखें ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे हदीस हम तक पहुंची है, हैरान हो जाएंगे आप। इनसे इंसान पूछे, जरा आप कभी पूछ के देखिएगा ऐसे लोगों से कि आपको कितना इल्म है इस बात का कि हदीस हम तक कैसे पहुंची, और आप देख लें 100% ऐसा होगा कि उनको कुछ नहीं पता होगा, बस मुंह की बातें हैं। और इस तरह से आज हमारे दीन को बिगाड़ा जा रहा है, ऐसा इंसान मुसलमान नहीं रह सकता जो हदीस का इनकार करते, जो हदीस को रद्द करते, वो मुसलमान नहीं है, इसलिए कि उसने तो रिसालत को ही रद्द कर दिया ना। फिर नहीं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, फिर तो वो एक आम ही इंसान है, वो कोई रसूल तो नहीं है फिर, क्योंकि अगर आपने हदीस ही नहीं लेनी तो उनका ये रोल ही खत्म कर दिया, तो बस वो फिर एक अच्छे इंसान थे जो अपने वक्त में आए थे और गुजर गए, ये कहना चाहते हैं। उनकी रिसालत है ही ये कि वो आज तक रसूल हैं और कयामत तक वही आखिरी रसूल है, और उनके बाद रिसालत का सिलसिला खत्म। लेकिन हदीस का इनकार करके आज ईमान के लुटेरे ईमान लोगों का छीन रहे हैं, बी वेरी केयरफुल। तो फरमाया वह अनजलना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी, ताकि आप बयान कर दें लोगों के लिए मा नुज़िला इलैहिम, जो उतारा गया उनकी तरफ, इसको खोल खोल के लोगों को वाजे करते हैं। इसलिए नहीं कह सकते आज कोई भी उठ के ये नहीं कह सकता मैं तो बड़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आती क्या सही है क्या गलत है। कैसे नहीं तुम्हें समझ आती? तुम क्या ये कहना चाहते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया? ये कहना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात छोड़ दी बताने से, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर सकती थी और जहन्नुम से दूर कर सकती थी, मगर मैंने उसका हुक्म दे दिया तुम्हें, और एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर सकती थी और जहन्नुम से करीब कर सकती थी, मगर मैंने उससे मना कर दिया तुम्हें। मैंने तुम्हें उससे मना कर दिया जो तुम्हें जहन्नुम से करीब कर सकती थी वो भी बता दिया तुम्हें, और जो जहन्नुम से दूर कर सकती थी वो भी तुम्हें बता दी, उनका भी हुक्म दे दिया तुम्हें, एक चीज भी नहीं ऐसी छोड़ी। इसका मतलब है अगर कोई ऐसा काम करता है जो नबी की सुन्नत में नहीं है, जो दीन में नहीं था, मगर वो सोचता है ये नेकी का काम है, सो व्हाट, कोई बुरा काम तो नहीं है ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया वो दीन में नहीं है, तो चाहे वो कितना ही अच्छा काम है, इमाम मालिक फरमाते हैं वो ऐसे ही है जैसे कि वो कह दे गया या जैसे कि वो गुमान करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत की है रिसालत। अस्तग़फिरुल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी, फिर भी आज कितने लोग हैं जो महरूम हैं इस वजाहत से जो उन्होंने कर दी। हमारे 90% लोग इस वजाहत को जानने से महरूम है। उन्होंने अपनी जॉब पूरी कर दी, उन्होंने वजाहत कर दी जो हमारे पास महफूज है, सेव है हमारे पास तफसीरों में, लेकिन और किसके लिए की थी? लिन्नास, लिए लोगों के। क्या हम उन लोगों में शामिल हैं जिनके लिए उन्होंने वजाहत की और वो आज उस वजाहत को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हैं, या हम उन लोगों में से हैं जिनको कोई परवाह नहीं, वो दे डोंट केयर, उन्होंने वजाहत कर दी होगी, हमें क्या, हमारे पास कौन सा टाइम है ये सारी वजाहतें सुनने का और समझने का। अल्लाह अकबर। तो देखना चाहिए कि हम कौन से वाले नास में से हैं। और यहां से हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जानना कितना जरूरी है दीन पे अमल करने के लिए। पता चल रहा है ना यहां से, जरूरत है या नहीं फिर हदीस की? अगर है जरूरत, अगर आप हाँ कह रहे हैं, तो कितनी हदीस पढ़ी है आपने? अगर अभी तक नहीं पढ़ी कोई भी किताब हदीस की, तो दिल में इरादा कर लें कि मैंने हदीस पढ़नी है। दुआएं करें कि अल्लाह मुझे मौका देना कि मैं हदीस को समझूं, सीखूं उसको, मुझे मरने से पहले ये मौका जरूर अता कर देना, क्योंकि वो वजाहत है इस कुरान की।